मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 26 नवंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। तीन दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। इनफैक्ट सच पूछिए तो दो दिनों तक तो खाली रहने की आदत है, लेकिन इस बार उसमें एक दिन का इजाफा हो गया था, तो डेफिनेटली थोड़ा खालीपन का जो वक्त है वो चूंकि लंबा हो गया, तो निश्चित रूप से दोस्तों मैंने आप सबको काफी कुछ मिस किया है। लेकिन चलिए कि यह जो सप्ताह है वो 5 दिनों का है और 5 दिनों तक हम लोग भरपूर तरीके से लाइफ मैनेजमेंट के अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। और फिलहाल जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि वह विचार, थॉट्स से जुड़ा हुआ विषय है, तो आज भी मैं उसी विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि पिछले अपने एपिसोड में मैंने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि हालांकि हम सब एक ही माहौल में रह रहे हैं, हमारे माता पिता एक ही हैं, एक ही परिवार है, सब कुछ एक जैसा ही है, लेकिन हम सब बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैंने आप सबसे बात की थी। इसे समझना इसलिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, अदरवाइज फिर हमें ये लगने लगता है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है हमारे माता पिता के हाथ में है, हमारे परिवार के हाथ में है, शैक्षणिक संस्थाओं के हाथ में है, हमारे समाज के हाथ में है। नहीं, उनके हाथ में जहां तक है डेफिनेटली उसकी एक भूमिका है और एक बड़ी भूमिका है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे जीवन का जो स्वरूप है उसका जो निर्धारण करने वाला तत्व है वो सिर्फ यही है। नॉट एट ऑल, हमारे हाथों में भी बहुत कुछ होता है कि हम अपने इस रूप को किस तरीके से गढ़ते हैं, और फिलहाल हम उसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि हम इसे जान लेते हैं तो फिर हम अपने रोल को समझ पाएंगे और फिर हमें लगेगा कि नहीं, हमारा स्वरूप पूरी तरह से दूसरों का ही गुलाम नहीं है। ठीक है, जहां तक दूसरों की भूमिका थी वहां तक हम मजबूर थे, वहां तक उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और उसका प्रभाव हमारे ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इससे उबर नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कटी हुई पतंग नहीं है। अगर हम एक बार इसे बहुत अच्छे तरीके से तार्किक दृष्टि से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली फिर हम पूरे जोश खरोश के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं एक दो तथ्य आप सबके सामने फ्रेंड्स और रखना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम सब अपने आसपास सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि चीज तो एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी समझ भी एक ही है। बात एक ही कही जाती है लेकिन हम उन्हें अलग अलग तरीकों से समझते हैं, और ये जिस तरीके से हम उसे समझेंगे बट नेचुरल है कि उसी रूप में वह हमारे अंदर जाएगा। मान लीजिए कि आपने सूर्यास्त देखा, सूर्यास्त को देखने के बाद आपको बड़ी निराशा महसूस हुई कि अरे सूरज डूब गया, अब अंधेरा हो जाएगा, तो आपके अंदर जो सूर्यास्त का जो दृश्य बनेगा, जो अंदर जाएगा, वो एक दुख का बनेगा, एक निराशा का बनेगा, राइट? लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो डूबते हुए सूरज की खूबसूरती से बिल्कुल मोहित हो रहा है, वह क्या लाल लाल गोला देखो अब कितना मध्यम होकर के बिल्कुल बादलों के बीच जा रहा है, पहाड़ के नीचे उतर रहा है, घड़े की तरह समुद्र में डूब रहा है, इसकी कितनी खूबसूरत लालिमा फैल रही है, और जब वो डूब जाता है तो वाह कितनी शांति चारों तरफ छा गई है, जीवन थम रहा है, शांति का वातावरण बन गया है, प्रदूषण खत्म हो गया है, कम होता जा रहा है, अब धीरे धीरे दिन भर की मेहनत के बाद थकान सी महसूस हो रही है, तब इस शांत वातावरण में बड़े इत्मीनान के साथ चैन की नींद लेने का अवसर मिलेगा, तो उसके दिमाग में जो सूर्यास्त का दृश्य आएगा वो बड़े आशावादी रूप में आएगा, बड़े सौंदर्य बोध के साथ वह उसे ग्रहण कर रहा है। घटना तो एक ही है, लेकिन एक ही घटना को ये दो लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से ही नहीं बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी तरीके से। और अगर इन दो लोगों को हम 2 लाख लोगों में या 2 करोड़ लोगों में डिवाइड कर दें तो बट नेचुरल है कि ये जो दोनों छोर हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि एक व्यक्ति सूर्यास्त को देख करके बहुत ज्यादा निराश है, दुखी है, दूसरा व्यक्ति सूर्यास्त को देख करके बहुत ज्यादा उत्साही है, बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो अब स्तर होंगे, जो परसेंटेज होगा, वो हजारों लाखों करोड़ों में होगा। किसी को पता लगा कि इसी बीच में ऐसे भी लोग हैं जो सुख भी महसूस करते हैं, दुख भी महसूस करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सूर्यास्त का एक ही दृश्य अगर इन 2 करोड़ लोगों के अंदर जा रहा है तो वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जा रहा है। यानी कि यह हमारी समझ पर डिपेंड करता है कि हम उस चीज को समझ कैसे रहे हैं, कितना रहे हैं, क्या रहे हैं। पहली बात, यहां मित्रों हमारा रोल हो जाता है। दूसरी बात देखिए कि जब कोई भी चीज हमारे दिमाग के अंदर आती है, हमारे अंदर आती है, तो उसके 3 लेयर्स हैं, उसको 3 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। अंदर भी फिल्टर लगे हुए हैं, बने हुए हैं। ये मत सोचिए कि जो चीज आ गई, नॉट एट ऑल। अंदर भी हमारे 3 मूल स्तर बने हुए हैं जिसको मनोविज्ञान में बकायदे विश्लेषित किया गया है। उसका एक स्तर, और इन 3 स्तरों के बारे में आप जानते हैं, इसका एक स्तर है जिसे हम कहते हैं कॉन्शस, यानी कि बिल्कुल हमारा चेतन मन। मैं अभी आपसे जिस मन या विचार के तहत बात कर रहा हूं, या यूं कह लीजिए कि जिस स्तर पर बात कर रहा हूं, वह चेतन का स्तर है। आप भी जो मुझे सुन रहे हैं और जो मुझे समझ रहे हैं, वह भी एक चेतन का स्तर है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो यह चेतन का स्तर है। तो राइट, तो जो भी चीज आ रही है वो चेतना के स्तर पर आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज चेतना के स्तर पर ही आए, कभी कभी वो अवचेतन के स्तर पर भी आती है। इसके बाद जो दूसरा स्तर है वही है जिसका मैंने अभी नाम लिया, अवचेतन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने खूब सुना होगा, खूब पढ़ा होगा, इस पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। फॉरेन राइटर्स ने तो जब जीवन के बारे में लिखना शुरू किया तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ही वो सबसे ज्यादा बातें करते हैं, और भारत में भी है, उसका नाम भले ही दूसरा दे दिया गया हो। सब कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग बनाइए, सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कीजिए, सभी ये बात कहते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के ठीक बाद में आता है, यानी कि ये बीच की स्थिति है। बीच की स्थिति का मतलब है जो तीसरी स्थिति है वह अवचेतन की स्थिति है, अनकॉन्शियस की स्थिति है, यानी कि जब हमारी चेतना गायब हो चुकी होती है, जब हमें कुछ भी नहीं पता लेकिन हम जीवित रहते हैं। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं इन तीनों को। मुझे आप सुन रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है। रात में जब आप सो जाते हैं, स्वप्न में आप अब इसी घटना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप स्वप्न देखते ही हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर आप कर रहे हैं। देखिए दिमाग काम कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड, लेकिन आपकी पकड़ में नहीं है वो, है ना। आप ऐसा नहीं है कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपने ढंग से अपने दिमाग को कहीं भी ले जा सकते हैं, आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को बंद कर सकते हैं, नहीं मुझे नहीं सुनना है, उसकी आवाज तेज कर सकते हैं। कॉन्शियस लेवल पर आप जैसा भी व्यवहार मेरे सुनने के साथ करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपके स्वप्न में आ रहा हूं और आपको कुछ सुना रहा हूं तो आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ मेरे हाथ में है। ये सब कॉन्शियस माइंड होता है। और जो तीसरा होता है फ्रेंड्स, वो है अनकॉन्शियस माइंड, कि आप कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मैं बेहोश हो गया हूं, खत्म हो गई बात, मैं स्वप्न भी नहीं देख रहा हूं, बेहोशी है, लेकिन मैं जीवित हूं, मेरी धड़कनें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, मैं मरा नहीं हूं, मैं जीवित हूं, ये अनकॉन्शियस माइंड है। तो ये हमारे 3 स्तर होते हैं अंदर के, और इसमें जो बीच का स्तर होता है वो सबकॉन्शियस माइंड का स्तर होता है, और इसे ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाने की बात कही जाती है। और ये हमारा जितना मजबूत होगा, जितना क्लीन होगा, साफ होगा, मान करके चलिए कि हमारा जीवन उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, अपनी बात मैं ये अंतिम वाक्य के साथ खत्म करूंगा कि जो भी चीज हम देखते सुनते करते हैं वो सबसे पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है, धीरे धीरे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतरता है, और सबकॉन्शियस माइंड में आने के बाद फिर वो सीधे अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के बस वहां मौजूद रहता है, वहां बना रहता है, वहां से वो फिर कहीं नहीं जाता है। आप यूं कह लीजिए कि जब आप तालाब में झील में कोई चीज फेंकते हैं तो सबसे पहले तो वो ऊपर सतह से टकराती है, फिर धीरे धीरे वो नीचे उतरते उतरते और आखिरी में तल पर जाकर वो चीज बैठ जाती है। तो अनकॉन्शियस माइंड एक तरह से हमारे मस्तिष्क का, मन का बिल्कुल अवतल भाग है, धरातल है, बिल्कुल नीचे का हिस्सा है और वहां सारी चीजें जाकर बैठ जाती हैं। तो दोस्तों, आज अपनी बात मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। हम इस विषय पर और आगे चर्चा करेंगे। आप लोगों से, आप लोगों के प्रश्न, जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें या अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।